तारा के मारे जाने पर अमित और मल्लिका का गुस्से से बुरा हाल था। मल्लिका ने अमित को समझाने का प्रयास किया, पर अमित उस पर गुस्सा हो गया और उसके बाल पकड़कर सिर जमीन पर मार दिया। मल्लिका को तब एहसास हुआ कि अमित उसकी खूबसूरती के झांसे में नहीं आया था, वो केवल उससे खेल रहा था। मल्लिका अपने कमरे में गई, वहाँ एक जार में आधा पानी भरा था और उसके ऊपर कुछ तैर रहा था। मल्लिका उसे देखकर बहुत खुश हुई और एक जहरीली मुस्कान के साथ हंसने लगी। वहीं दूसरी ओर अमन जिन्नातों की दुनिया में जाने के लिए तैयार था। उसने करिश्मा जी को आवाज़ दी थी, लेकिन करिश्मा जी और तारा ने कोई जवाब नहीं दिया। अमन सोचने लगा कि वे दोनों कहाँ गई हैं। तभी उसे कुछ एहसास हुआ और वो अपने कमरे में गया। कमरे के पास जाकर देखा कि शेर वाली पेंटिंग हटी हुई थी। अमन सोच में पड़ गया और बिना देरी किए कमरे में चला गया। वहां देखा कि करिश्मा जी ने तारा को एक गोल घेरे में बिठाया हुआ था और खुद खड़ी होकर मंत्रों का जाप कर रही थी। अमन चौंक गया और अपनी माँ से बोला, ये सब क्या हो रहा है? आप तारा के साथ क्या कर रही हैं? करिश्मा जी ने अमन को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, तुम चुपचाप खड़े रहो। फिर वो अपना जाप जारी रखती हैं। करीब 10 मिनट बाद मंत्र पूरा करने पर करिश्मा जी तारा के ऊपर कुछ पढ़कर फूंकती हैं। तारा के कपड़ों का रंग बदलने लगा। पहले सफ़ेद लहंगा पहने हुए थी, अब आधा लाल और आधा सफ़ेद हो चुका था। अमन पूरी तरह से चौंक गया और अपनी माँ से पूछा, माँ ये सब क्या है? आपने तारा पर ऐसा कौन सा जादू किया है जिससे उसका लहंगा आधा सफ़ेद और आधा लाल हो चुका है? करिश्मा जी ने कहा, बेटा जी रिलैक्स, मैं अभी आपको सारी बात समझाती हूँ। अभी फ़िलहाल हमें यहाँ से चलना होगा। करिश्मा जी ने तारा को ऊपर की ओर चलने का इशारा किया ताकि वो उस गुप्त कमरे से बाहर निकल सके। जल्दी ही तीनों बंगले के हॉल में थे। अमन ने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन वो सवालिया नज़रों से अपनी माँ की ओर देखने लगा। करिश्मा जी ने कहा, बेटा मैंने तारा बेटी को जिन्नातों की दुनिया के कुछ नियम सिखाए हैं, वो मैंने उसके जहन में मंत्रों के द्वारा डाल दिए हैं, और इसका लहंगा आधा सफ़ेद और आधा लाल इसलिए किया है क्योंकि ये अभी नई नई दुल्हन बनी है और दुल्हन के कपड़ों में लाल रंग का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने जिन्नातों के जोड़े में आधा लाल रंग मिला दिया है, समझे तुम? अमन ने कहा, ओ अच्छा माँ, ये आपने बिल्कुल ठीक किया। अगर जिन्नातों की दुनिया में तारा से कोई भी गलती हो जाती तो हमें इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। तारा चुपचाप शांति से सुन रही थी। उसे जल्द से जल्द बच्चा चाहिए था, जिसके लिए वो सारे रस्म वगैरह करने के लिए तैयार थी। करिश्मा जी ने कहा, अभी अगले 15 मिनट के अंदर अंदर तुम लोगों को जिन्नातों की दुनिया के लिए निकलना होगा। जैसा कि मैंने सारे नियम तारा के अंदर डाल दिए हैं, अब मुझे नहीं लगता कि उसे किसी भी तरह की कोई गलती होगी। अमन ने कहा, ठीक है माँ, मैं तिलिस्मी पत्थर लेकर आता हूँ, उसके बाद हम दोनों जिन्नातों की दुनिया की ओर प्रस्थान करेंगे। करिश्मा जी तारा के सर पर हाथ फेरने लगीं और बोलीं, बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह की तुमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तारा ने हाँ में सर हिला दिया और अमन अपने सीने में तिलिस्मी पत्थर छुपाए वहां मौजूद था। अमन को देखकर करिश्मा जी ने उसके सर पर भी हाथ रखा और कहा, तुम दोनों खैर से जाओ, अगले ही कुछ पल में रात के 12 बजने वाले हैं और 12 बजने से पहले पहले तुम्हें जिन्नातों की दुनिया के दरवाजे पर पहुंचना होगा। अमन ने तारा का हाथ पकड़ा और उसे बंगले के खूबसूरत गार्डन में ले गया। उसके गार्डन में बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद रंग के फूलों का पौधा था। अमन उसके पास गया और वहाँ खड़े होकर कुछ पढ़ना शुरू किया। तारा हैरानी से कभी अमन को देख रही थी तो कभी उस सफ़ेद फूल वाले पौधे को, जो रात के उस पहर में बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। जैसे ही अमन ने कुछ मंत्र पढ़कर उस पौधे की ओर फूंका, देखते ही देखते वहाँ एक रास्ता नजर आने लगा। तारा की हैरत का कोई ठिकाना नहीं था। अमन ने तारा का हाथ पकड़ा और सफ़ेद फूलों के नीचे जो रास्ता नजर आ रहा था उस ओर लेकर चलने लगा। जल्दी ही वे लोग बहुत खूबसूरत दरवाजे के सामने खड़े हुए थे। तारा को वहाँ की खूबसूरती का अंदाजा लगाना कठिन हो रहा था, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह उसने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी थी। सफेद दरवाजे के पास बड़े बड़े फुवारे, हल्का हल्का धुआं, बहुत खूबसूरत लग रहा था। वे लोग अभी अंदर नहीं गए थे, दरवाजे के बाहर ही खड़े हुए थे। दरवाजे के बाहर खड़े होकर तारा सोच रही थी कि ये बाहर से इतना खूबसूरत है तो अंदर से कितना खूबसूरत होगा। अमन दरवाजे के पास खड़ा हुआ और उसने अपने हाथ का पंजा दरवाजे के बीचों बीच एक हाथ जैसे निशान पर रख दिया। जैसे ही अमन ने अपना हाथ उस निशान पर रखा, देखते ही देखते उस दरवाजे में से रंग बिरंगी रोशनी निकल लगी और वो दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। तारा ने देखा कि अमन के केवल छूने भर से वो पूरा दरवाजा खुल चुका था। कोई आम दरवाजा नहीं था, वो इतना बड़ा दरवाजा था जिसकी लंबाई चौड़ाई का अंदाजा कोई भी इंसान आसानी से नहीं लगा सकता था। अमन ने तारा का हाथ पकड़ा और उस दरवाजे के बीचों बीच खड़ा हो गया। तारा ये देखकर हैरान रह गई। वहां पर एक चिड़िया का बच्चा भी नहीं था, वहां पर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था, केवल दिखाई दे रहा था तो एक बहुत ही खूबसूरत सी दुनिया। ऐसा लग रहा था ये परियों की दुनिया से भी ज्यादा खूबसूरत था। तारा सोच रही थी कि इतनी खूबसूरत जगह तो उसके परीलोक में भी कहीं नहीं थी। अमन ने तारा का दाया हाथ कसकर पकड़ लिया और आगे बढ़ने लगा। तारा ये देखकर चौंक गई कि जैसे जैसे वे लोग आगे बढ़ते वैसे वैसे उनके ऊपर लाल, सफेद, गुलाबी, नीले हर रंग के फूलों की बरसात होने लगती थी। तारा की हैरानी से बुरा हाल था। हर कदम पर फूल ही फूल उनके ऊपर बरस रहे थे, लेकिन फूल बरसने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तारा अपने आप को रोक नहीं पाई और अमन से पूछ बैठी, अमन सर, ये फूल कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ तो केवल हम दोनों अकेले हैं। अमन तारा की ओर देखने लगा और बोला, जिन्नातों की महारानी, ये फूल आपका स्वागत के लिए हैं। इस जगह इस वक्त हम दोनों अकेले नहीं हैं, ये जगह जिन्नातों से भरी पड़ी है। तारा को एक ही जिन दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अमन को खूब सारे जिन साफ साफ नजर आ रहे थे। तारा को लगा कि अमन उसे झूठ बोल रहा है। तब तारा ने अमन से कहा, अमन सर, आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? केवल हमारे ऊपर फूलों की बरसात हो रही है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है। अमन ने उसे बड़े ही प्यार से देखा। अब अमन को तारा पर बहुत प्यार आ रहा था, क्योंकि वो एकदम मासूम बच्चे की तरह सवाल पूछती हुई बहुत क्यूट लग रही थी। अमन ने कहा, महारानी जी, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, और रही बात जिन्नातों की, तो ये लीजिए, आप अपनी आंखों से स्वयं देख लीजिए। ऐसा कहकर अमन ने अपने हाथों से 3 बार तालियां बजाई। जैसे ही अमन ने तालियां बजाई, तारा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि चारों ओर ढेर सारी हजारों लाखों की मात्रा में वहां पर सफेद कपड़े पहने हुए जिन्नात मौजूद थे, जिनमें कुछ औरतें थी, कुछ आदमी थे, और वो उन सबके हाथों में अलग अलग रंग के फूलों की थाली थी जो वो अमन के ऊपर और तारा के ऊपर बरसा रहे थे। परी की आंखें ये सब देखकर बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी। उसकी हैरत का उस वक्त कोई ठिकाना नहीं था, और वो कभी एक नजर अमन को देखती तो कभी उन जिन्नातों की फौज को देखती। ऐसा लग रहा था जैसे लाखों करोड़ों की संख्या में जिन्नात उस वक्त वहां मौजूद थे। उन्हें देखकर तारा को डर लगने लगा, और उसने डर के मारे अमन का हाथ पकड़ लिया था। अमन उसके हाथों की कंपन से उसका डर महसूस कर चुका था। अमन ने तारा से कहा,
तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इन सब की होने वाली महारानी हो, ये सब तुम्हारी सेना है, तुम्हें इनसे डरने या घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम होने वाले महाराज अमन की बीवी हो, तो तुम्हें डरने का कोई हक नहीं है। तारा ने अमन से कहा, अमन सर, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि इन लाखों करोड़ों जिन्नातों की जगह आप केवल कुछ ही जिन्नातों को मुझे दिखाएं? क्योंकि इतने सारे जिन्नातों को एक साथ देखकर वाकई मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तारा की बात सुनकर अमन ने एक पल के लिए सोचा और फिर 2 बार तालियां बजाई। आधे जिन्नात तारा को दिखने बंद हो गए, और अब केवल कुछ हजार ही जिन मौजूद थे। तारा को अभी भी उनसे डर लग रहा था, लेकिन उसने अब अमन से कुछ नहीं कहा, और वो चुपचाप अमन का हाथ पकड़े हुए आगे की ओर बढ़ने लगी।